ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
पंचतंत्र
कहानी नंबर 10 रंगा सियार। किसी जंगल में चंडरव नाम का एक सियार रहता था। वो एक बार भूख से व्याकुल होकर जीभ के लालचवश किसी नगर में जा पहुंचा। नगर में रहने वाले कुत्ते उसे देखकर जोर से भौंकते हुए दौड़े और उसे नोचने लगे। उनसे जान बचाने के लिए सियार पास वाले धोबी के घर में घुस गया। वहां नील के पानी से भरा नांद तैयार रखा था। कुत्तों से डरा हुआ सियार उस नांद में गिर गया। जब वो उसमें से बाहर निकला तो वो नीले रंग का हो गया। तब कुत्ते उसको गीदड़ न समझकर अपनी अपनी दिशा को चले गए। चंडरव भी वहां से दूर जाकर जंगल की ओर चल दिया। नीला रंग कभी नहीं छूटता। कहा भी है, वज्रलेप, मूर्ख, नारी, करकट, करकट यानी केंकड़ा, मछली, नील और शराब पीने वालों की समान अवस्था होती है। वज्रलेप से चाहे कभी मुक्ति मिल भी जाए, परंतु केंकड़े और मछली के दांत तथा नीले रंग से मुक्ति मिलना कठिन होता है। शिवजी के गले के जहर की तरह चमकने वाले उस नीले गीदड़ को अपूर्व जीव समझकर वहां के सारे सिंह, बाघ, गैंडे आदि जंगल में रहने वाले जीव डर से व्याकुल होकर चारों ओर भागने लगे और कहने लगे, नहीं मालूम कि इसकी कैसी कोशिश और शक्ति होगी, इसलिए हम दूर भाग चलें। कहा भी है, जिसकी कोशिश, कुल तथा पराक्रम बिना जाने यदि अपने हित की इच्छा हो तो बुद्धिमान मनुष्य को उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। चंडरव उनको डर से व्याकुल देखकर बोला, हे जंगल के जीवों, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? डरो मत, ब्रह्मा ने आज खुद ही मेरा निर्माण करके कहा है कि यहाँ के जीवों का कोई राजा नहीं, इसलिए तुम्हें मैं आज सारे जीवों का राजा नियुक्त करता हूँ। तुम्हारा नाम होगा कुकुद्रुम, इसलिए तुम जाकर पृथ्वी पर जंगल के सारे जीवों का पालन करो। इस कारण मैं आया हूँ। मेरी छत्र छाया में जंगल के सारे जीवों को रहना चाहिए। मैं राजा कुकुद्रुम सारी त्रिलोकी का स्वामी हूँ। ये सुनकर सिंह, बाघ आदि सब जीव कहने लगे, स्वामी आज्ञा दीजिए। तब उसने सिंह को सेनापति पदवी दी, बाघ को रक्षक, गैंडे को तांबुलधिकारी और भेड़िये को द्वारपाल बना दिया। जो अपनी जाति के सियार थे उनसे उसने बात भी नहीं की। सारे सियार धक्का देकर निकाल दिए गए। इस प्रकार उसके राज कार्य में लगने पर सिंह आदि जीव हिरनों को मार मार कर उसके आगे फेंकते थे और वो प्रभु धर्म से उन सबका उचित बंटवारा करके उनके आगे डालता जाता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर उसने दूर से आवाज करने वाले सियारों के समूह की आवाज सुनी। उस आवाज को सुनकर पुलकित शरीर तथा आंखों में आंसू भरकर वो ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगा। तब सिंह, बाघ आदि उसकी ऊंची आवाज के कारण उसे सियार समझकर बोले, अरे ये तो सियार है। ऐसा कह और शर्म से नीचा मुंह करके एक क्षण बाद बोले, अरे इस सियार ने हमको ठग लिया, इसलिए इसे मार डालो। सियार ने भी वो बात सुनकर भागने की इच्छा की, किंतु उसी जगह पर सिंह आदि ने उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे मार दिया। इसलिए मैं कहता हूँ, जिसने अपने आंतरिक लोगों को त्याग दिया है, इत्यादि। ये सुनकर पिंगलक बोला, दमनक, इसका क्या प्रमाण है कि वो मेरे ऊपर दुष्ट बुद्धि रखता है? वो बोला, आज ही मेरे आगे उसने निश्चय किया है कि मैं सुबह पिंगलक को मार डालूंगा, यही इसका प्रमाण है। सुबह आपके पास आने के समय वो लाल मुंह और आंखें लाल किए, फड़फड़ाते होठों से इधर उधर देखता तथा अनुचित स्थान में बैठा हुआ आपको गुस्से की नजर से देखेगा। ऐसा देखकर जो उचित हो आप वही करिएगा। ये कहकर वो संजीवक के पास गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। संजीवक भी उसे धीरे धीरे आते हुए देखकर आदर से बोला, मित्र, तुमको बहुत समय के बाद देखा, कुशल तो हो? कहो, जिससे मैं न देने वाली चीज भी घर में आए हुए मित्र को प्रदान कर सकूं। कहा भी है, इस धरती में वही धन्य, वही विवेकज्ञ और सभ्य हैं जिनके यहाँ काम के लिए अच्छे दिल वाले हमेशा आते रहते हैं। राजा के सेवकों की संपत्ति दूसरों के अधीन रहती है, मन अशांत रहता है और अपने जीवन में भी उनको विश्वास नहीं रहता है। और भी सेवा से धन पाने की इच्छा करने वाले सेवकों ने जो किया है वो देखो। शरीर की जो स्वतंत्रता थी वो भी इन मूर्खों ने नष्ट कर दी। सबसे पहले तो जन्म ही दुख का कारण होता है, फिर गरीबी, फिर उसमें भी सेवा का काम। अहो, कैसी दुख की परंपरा है। महाभारत में इन 5 प्रकार के प्राणियों को जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ माना गया है, गरीब, रोगी, मूर्ख, प्रवासी और हमेशा सेवा करने वाला सेवक। तीव्र इच्छा होने पर भी वो अपनी इच्छा से नहीं खाता, जागता हुआ भी नहीं जागता और बिना शंका के बात नहीं बोलता। ऐसी हालत में क्या सेवक भी जिंदा रहता है? जिन्होंने सेवा को कुत्ते की वृत्ति कहा है उन्होंने झूठी कल्पना की है, क्योंकि कुत्ता स्वच्छंद घूमता है और सेवक दूसरे की आज्ञा से चलता फिरता है। पृथ्वी में बिस्तर, ब्रह्मचर्य, कृशता, कृशता मतलब कमजोरी, और कम भोज, इस तरह सेवक तथा यति, यति होता है संन्यास, इस तरह सेवक तथा यति की स्थिति समान होती है। अंतर बस यही है कि सेवक का काम पाप के लिए और यति का काम धर्म के लिए होता है। सेवक धन के लिए सर्दी गर्मी के जो कष्ट सहन करता है वो कष्ट कम होते यदि वो धर्म से अलग नहीं हो जाता। उस बहुत मीठे गोल और मनोहर लड्डू से भी क्या लाभ जो सेवा करने से प्राप्त होता है। संजीवक बोला, तो तुम क्या कहना चाहते हो? वो बोला, हे मित्र, मंत्रियों को मंत्र भेद करना उचित नहीं है। कहा भी है, मंत्री की पदवी पर स्थित होकर भी मंत्री यदि मंत्र भेद करे तो वो राजा के काम को नष्ट करके खुद भी नरक में जाता है। जिस मंत्री ने राजा का मंत्र भेद कर दिया उसने राजा का बिना शस्त्र के वध कर डाला। ये नारद जी कहते हैं। तो भी मैंने तुम्हारे स्नेह बंधन में बंधे होने के कारण मंत्र भेद किया है, क्योंकि तुमने मेरे कहने पर विश्वास करके इस राजकुल में प्रवेश किया था। कहा भी है, जिसके विश्वास से कोई किसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी हत्या उसी को लगती है। ये मनु जी का कथन है। इसलिए तुम्हारे ऊपर पिंगलक दुष्ट बुद्धि है। आज जब मैं और वो एकांत में थे तब उसने मेरे आगे चार कानों में ये बात कही थी, अर्थात सुबह संजीवक को मारकर मैं अपने सारे परिवार को हमेशा के लिए तृप्त करूंगा। तब मैंने उससे कहा, स्वामी ये ठीक नहीं है कि मित्र दोह से जीवन यापन किया जाए। कहा भी है, ब्राह्मण का वध करके उसके योग्य विशेष प्रायश्चित करने से प्राणी शुद्ध हो जाता है, परंतु मित्र दोही कभी भी शुद्ध नहीं होता। तब उसने क्रोध पूर्वक मुझसे कहा, ओ दुष्ट बुद्धि, संजीवक घास खाने वाला जीव है और हम मांस खाने वाले, इसलिए हमारे उससे स्वाभाविक दुश्मनी है। तब हम शत्रु की उपेक्षा क्यों करें? इसी कारण साम आदि उपायों से मारेंगे, इसको मारने में दोष नहीं है। कहा भी है, यदि शत्रु को अन्य उपायों से न मारा जा सके तो अपनी कन्या देकर भी मारना चाहिए, क्योंकि उसको मारने में कोई दोष नहीं है। युद्ध करने को तैयार शूरवीर को युद्ध में कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि पूर्व काल में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने सोते हुए धृष्टद्युम्न को मार डाला था, इसलिए मैं उसका निश्चय जानकर तुम्हारे पास आया हूँ। अब मुझको विश्वासघात का दोष नहीं लगेगा। ये गुप्त बात भी मैंने तुम्हें बता दी, इसके बाद तुमको जो अच्छा लगे वो करो। संजीवक वज्र के समान बात सुनकर बेहोश हो गया। इसके बाद जब उसे होश आया तो वो कहने लगा कि ये सही ही कहा है, नारी प्रायः दुर्जन के पास जाती है, राजा प्रायः प्रेम से रहित होता है, धन प्रायः कंजूस के पास ही रहता है, और बादल प्रायः पर्वत और किले पर ही बरसते हैं। जो मूर्ख ऐसा मानता है कि राजा उसे मानता है वो सींग रहित बैल के समान होता है। मनुष्यों का वनवास अच्छा है, भिक्षा से भोजन पाना भी अच्छा है, भार उठाकर जीना अच्छा है, बीमारी तक अच्छी है, परंतु अधिकार द्वारा संपत्ति प्राप्त करना अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने ये बहुत अनुचित किया जो इसके साथ मित्रता की। कहा भी है, जिनका समान धन है और समान कुल है उनमें ही मित्रता और विवाह होना चाहिए। बलवान और कमजोर के बीच मित्रता तथा विवाह होना उचित नहीं है। और भी, हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और बुद्धिमान बुद्धिमानों का साथ लेते हैं, क्योंकि मित्रता अपने बराबरी स्वभाव व व्यवसन वालों में ही होती है। इसलिए यदि मैं जाकर उसे मनाऊं तो भी वो प्रसन्न तो नहीं होगा। कहा भी है, जो मनुष्य किसी कारण गुस्सा हो वो उस कारण के नष्ट हो जाने पर शांत हो जाता है, किंतु जो मनुष्य अकारण ही दुश्मनी करता हो उसको कोई कैसे प्रसन्न कर सकता है। अहो, सच कहा है, उपकारी भक्त, दूसरों के लिए काम करने वाला, सेवा और व्यवहार के तत्व को जानने वाला और द्रोह से रहित पुरुष को भी अस्थिर स्वभाव वाले स्वामियों से परेशानी होती है। उनसे काम की सफलता हो या ना हो, इस कारण सागर की तरह राजाओं की सेवा हमेशा शंका से व्याप्त रहती है। कभी कभी प्रेम भाव से किया हुआ उपकार भी दुश्मनी का और दूसरों द्वारा किया हुआ अपकार भी प्रेम का कारण बनता है। एक भाव से न रहने वाले राजाओं का मन अनुचित जिद होने के कारण सेवा धर्म बहुत कठिन और योगियों के लिए भी प्राप्त न होने वाला होता है। ये मैंने जान लिया कि मुझ पर इसकी कृपा को न सहने वाले समीपवर्तियों ने पिंगलक को मेरे ऊपर गुस्सा कर दिया है। समीप पड़ती मतलब नजदीक रहने वालों ने। इस कारण ये मुझ निर्दोष के लिए भी ऐसा कह रहा है। कहा भी है, जैसे क्रुद्ध सौते स्वामी की पहली पत्नी के उपकारों से भी जलती हैं, वैसे ही सेवक किसी पर प्रभु की प्रसन्नता नहीं सह सकते। ये होता ही है कि गुणी समीप वर्तियों के रहते गुणहीनों पर स्वामी की कृपा नहीं होती। कहा भी है, अधिक गुणी लोगों से साधारण गुणी लोगों के गुण तिरस्कृत हो जाते हैं। जिसे रात में दिए की रोशनी मनोहर लगती है, किंतु सूर्य के उदय हो जाने पर वो अच्छी नहीं लगती। दमनक बोला, मित्र यदि ऐसा है तो तुमको कोई डर नहीं है। दुर्जनों के कारण क्रोधित होने पर भी वो तुम्हारी बातों से खुश हो जाएगा। संजीवक बोला, ये तुमने ठीक नहीं कहा। छोटे दुर्जनों के बीच भी नहीं रहा जा सकता, क्योंकि कोई ना कोई उपाय करके वो जरूर मारते हैं। कहा भी है, बहुत से क्षुद्र पंडित माया जाल से जीविका चलाते हैं। वे करने लायक ना करने लायक को भी भूल जाते हैं, जैसे एक ऊंट के साथ काका दिको ने किया था। दमनक बोला, ये कैसे? तो कहने लगा, 11वीं कहानी, नीच सिंह और ऊंट।
पंचतंत्र
ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।